ओके, ये मंदिर का है। अच्छा,
यस,
दर्शन खुले हैं या दर्शन बंद है इस समय?
खुले हैं खुले।
दर्शन कर सकते हैं, फिर प्रारंभ करते हैं। हम दर्शन
यस,
नहीं किए कभी नगर में डीपीस के। अच्छा, धन्यवाद।
प्रभु
ओके, थैंक यू प्रभु। शुरू
जी, हरे कृष्ण।
करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
ओम नमो
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम
भगवते वासुदेवाय।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
नारायणं नमस्कृत्य
नमस्कृत्य
नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयामुदीरये नष्टप्रायेष्व भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। श्रीमद्भागवतम स्कंद 10 अध्याय। कौन सा अध्याय है? अध्याय 9 है ना? कि 10, अध्याय 10, श्लोक क्रमांक 38। आप लोग दोहराएंगे इस श्लोक को? आप पीछे पीछे दोहरा सकोगे कि हम पढ़ लें? केवल
आप ही पढ़िए प्रभु जी,
हम ही पढ़ लें। ठीक है। वाणी गुणानुकथने श्रवणो कथायां हस्तौ च कर्मसु मनस्तव पादयोन स्मर्त्यां शिरस्तव निवास जगत् प्रणामे दृष्टि सतां दर्शनेस्तु भवत्तनुना। श्रीमद्भागवतम के 10वें स्कंद का श्लोक है। इसका अनुवाद इस प्रकार से है। अब से हमारे सभी शब्द आपकी लीलाओं का वर्णन करें, हमारे कान आपकी महिमा का श्रवण करें, हमारे हाथ पांव तथा अन्य इंद्रियां आपको प्रसन्न करने के कार्यों में लगे तथा हमारे मन सदैव आपके चरण कमलों का चिंतन करें। हमारे सिर इस संसार की हर वस्तु को नमस्कार करें, क्योंकि सारी वस्तुएं आपके ही विभिन्न रूप हैं और हमारी आंखें आपसे अभिन्न वैष्णवों के रूपों का दर्शन करें। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा यहाँ पर भगवान को समझने की विधि दी गई है। यह विधि भक्ति है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। हर वस्तु को भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। ऋषिकेण ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते। भगवान कृष्ण की सेवा में हर वस्तु को मन शरीर तथा सारी इंद्रियों को लगाना चाहिए। इसे नारद स्वयंभू तथा शंभु जैसे दक्ष भक्तों से सीखना होगा। यही विधि है। हम भगवान को समझने की अपनी विधि नहीं गढ़ सकते, क्योंकि ऐसा नहीं है कि हम जो कल्पना कर लें या मन से गढ़ लें उसे भगवान का ज्ञान हो जाएगा। ऐसा विचार यत मत तत्पथ मूर्खतापूर्ण होता है। कृष्ण कहते हैं भक्त्याहम एकया ग्राह्यः, केवल भक्ति के कार्यों द्वारा मुझे समझा जा सकता है। यह अनुकूलेन कृष्णानुशीलनम अर्थात भगवान की सेवा में अनुकूल भाव से लगे रहना कहलाता है। ओम ज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशकारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। तो अहमद नगर के, वैसे ये अहमद नगर नाम चेंज होना चाहिए, हुआ क्यों नहीं है अभी तक?
ब्रो जस्ट अ मिनट, इंट्रोडक्शन जरा बोलना था प्लीज।
कोई जरूरत नहीं है इंट्रोडक्शन की, क्लास शुरू करते हैं। क्लास के बाद अगर समय होगा तो कर लीजिए। सो धन्यवाद आप सबका, अहमद नगर के भक्तों का जिन्होंने हमें अवसर दिया कृष्ण कथा कहने का। विशेष करके गिरिवरधारी प्रभु को धन्यवाद देंगे कि उन्होंने हमें इस सेवा में लगाया। वैसे वो खुद बहुत अच्छा प्रचार करते हैं। कानपुर में जब हम लोग थे तो हमने उनका प्रवचन सुना था, बहुत अच्छा बोलते हैं। तो आप सब तो वैसे भी अच्छा अच्छा सुनते रहते होंगे। दरअसल इसीलिए हमें बुलाया गया कि जब तक सूखा नहीं पड़ता तो बाढ़ का आनंद या वर्षा का आनंद नहीं आता। जब सूखा पड़ता है तो वर्षा का महत्व पता चलता है। इसी तरह आप लोगों के ऊपर सदैव वर्षा होती रहती है अच्छे अच्छे प्रवचनों के द्वारा, अच्छी अच्छी कथाओं के द्वारा। तो हमें थोड़ा बुलाया गया कि लोगों को पता चले सूखा क्या होता है, मतलब गलत अच्छा बहुत अच्छा प्रचार नहीं जो करते उनको कभी कभी बुलाया जाता है जो कथा नहीं करते अच्छी, ताकि जो लोग अच्छा करते हैं उनका महत्व समझ सके। तो हमारे इस प्रवचन से आप सब गिरिवरधारी प्रभु का महत्व समझ सकें, इसीलिए हमें बुलाया गया है ताकि आपको पता चले कि कितना अच्छा आपको संग मिल रहा है। तो ये जो श्लोक है, वाणी गुणानुकथने श्रवणो कथायाम, ये बड़ा महत्वपूर्ण श्लोक है और विशेष करके अब इस कार्तिक के महीने में हम लोग इस पर चर्चा कर रहे हैं। गिरिवरधारी प्रभु ने कहा कि इस श्लोक पर चर्चा होनी चाहिए, तो बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि कार्तिक के महीने में ही ये लीला हुई थी, दीपावली के दिन जिस दिन ये श्लोक कहा गया, नलकुवर और मणिग्रीव के द्वारा उनकी प्रार्थनाएं हैं। इससे पहले कि हम इनकी प्रार्थना पर चर्चा करें, हमें ये जानना चाहिए कि प्रार्थना कर कौन रहा है। और अगर हम ये जान लेते हैं कि प्रार्थना कौन कर रहा है, उससे हमें क्या लाभ होगा, उससे हमें एक लाभ होगा, हम ये समझ सकेंगे कि ये जो प्रार्थना है इसका क्या किस पर प्रभाव हो सकता है। दूसरी चीज, हमारे जीवन में इस प्रार्थना का क्या महत्व है, इसको समझने के लिए हमें नलकुवर और मणिग्री इनके इतिहास या इनकी स्थिति को जानना चाहिए। हम पूरे इतिहास में तो नहीं जा रहे हैं कि क्या लीला हुई, स्वाभाविक है आप सब कई बार इसे सुन चुके हैं, हम केवल उनकी स्थिति का वर्णन करना चाहते हैं। नलकुवर और मणिग्रीव जो यह प्रार्थना अर्पण कर रहे हैं, कौन थे वे लोग जब उन्हें श्राप नहीं मिला था उससे पहले, भोगी व्यक्ति थे, भोगों में पड़े हुए, आनंद लेना उनका कार्य था, साधुओं का आदर नहीं करना उनका कार्य था, स्त्रियों का संग करना, शराब पीना, भोग में लगे रहना, अहंकार में रहना, बहुत अहंकारी थे। क्यों अहंकार था उनको? अहंकार था उनको अपनी सुंदरता का, अहंकार था उनको अपने धन का, अपने तो नहीं कहना चाहिए, पिता के धन का अहंकार था उनको, अपनी बड़ी ऊंची स्थिति का क्योंकि शिवजी के वो शिष्य हैं, अहंकार था उनको देवता होने का। तो सुंदरता, धन, मान प्रतिष्ठा, स्थान, इन सब का अहंकार था और इन सब का वो उपयोग अपने भोग के लिए कर रहे थे। और अगर इस जगत में हम लोग देखें तो हम सब भी उसी स्थिति में हैं। हम सब के पास थोड़ा बहुत मान सम्मान हो जाता है, हमारे पास थोड़ा बहुत धन आ जाता है, हम कोई अच्छी स्थिति में हो जाते हैं, कोई सुंदर शरीर मिल जाता है, अहंकार बढ़ जाता है। तो हम लोग भी उन्हीं की स्थिति में हैं, इसीलिए ये लीला और ये श्लोक हमारे लिए है, क्योंकि हमारी भी वही स्थिति है, अहंकार से भरे हुए हैं, थोड़ा सा धन का अहंकार है, थोड़े से सौंदर्य का अहंकार है, थोड़े से यश का अहंकार है, थोड़े से बल का अहंकार है। तो इसीलिए इस अहंकार में रहते हुए उन लोगों के साथ क्या हुआ और कैसे वो भक्त बने, ये जो भक्ति का मार्ग है इसको इस लीला में दर्शाया गया। सुभोगी व्यक्ति, अहंकारी व्यक्ति, अपराधी व्यक्ति, जिन्होंने भगवान के प्रति अपराध किया, भगवान के भक्तों के प्रति अपराध किया, भगवान के कौन कौन से भक्तों के प्रति अपराध कर दिया, उन्होंने पहला अपराध शिवजी के प्रति कर दिया, दूसरा अपराध गंगा जी के प्रति किया, तीसरा अपराध नारद मुनि के प्रति किया, इतने सारे शुद्ध वैष्णवों के प्रति अपराध कर चुके, और फिर अपने पिता कुबेर के प्रति तो अपराध किया ही। तो अपराधी व्यक्ति है, अहंकारी व्यक्ति है, भोगी व्यक्ति है, लेकिन वो भी भगवान को प्राप्त कर रहा है। इसलिए भागवत में कहा गया है किराठुनांद्र पुलिंद पुल कषा आभीर शुंभायवनाख सादया यन्ये च पापा यदपाश्रयाश्रया शुद्ध्यन्ति तस्मै प्रभवेष्णवे नमः। तो क्या कहा गया है कि भगवान का नाम, भगवान के भक्तों का संग इतना श्रेष्ठ है, इतना शक्तिशाली है कि चाहे कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो, कई नाम गिना दिए गए, किराट हुनांद्र पुलिंद पुलकशा आभीर शुंभा यवना कसादयः, और उन सब का नाम गिनाने के बाद ये अन्य च पापा, इनसे भी नीचे गिरे हुए अगर कोई लोग हैं, शुद्ध्यन्ति तस्मै प्रभु विष्णुवे नमः, वो लोग शुद्ध हो जाते हैं। तो इसलिए यहां जो हम ये प्रसंग देख रहे हैं बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि ऐसे भक्तों को शुद्धिकरण का मार्ग, तो कैसे शुद्धिकरण हुआ उनका, क्या उन्होंने ऐसा किया जो उनका शुद्धिकरण हो गया। वो तो भोग कर रहे थे, आनंद कर रहे थे, स्त्रियों के साथ नग्न स्नान कर रहे थे, तो फिर क्या क्या ऐसा उन्होंने कर लिया कि उनको भगवान प्राप्ति हो गई। पहला उनका भक्ति में आगे बढ़ने के लिए जो पहली सीढ़ी या पहला कारण है, एक भक्त की कृपा, नारद मुनि की कृपा। नारद मुनि ने अपराध नहीं लिया, हालांकि उन्होंने बहुत अपराध किया। नारद मुनि आए, कोई आदर नहीं किया, सम्मान नहीं किया, अपने शरीर तक को ढका नहीं, ऐसे ही खड़े रहे, ये बहुत बड़ा अपमान है। तो फिर कृपा हुई। तो पहला कारण हम सब का भी, नलकुवर मणिग्रीव का देखें, कृष्ण को प्राप्ति में भक्त की कृपा। और हमारे जीवन में भी अगर हम कृष्ण की प्राप्ति करेंगे तो उसका पहला कारण होगा भक्त की कृपा। अब हम सब भक्ति में आए हैं, हम भक्ति मार्ग का पालन कर रहे हैं, तो भक्ति मार्ग का पालन किस लिए कर पा रहे हैं, भगवान के नाम का जप किस लिए ले पा रहे हैं, ये बहुत दुर्लभ है। वेदांत सूत्रों में कहा गया है अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। ब्रह्म जिज्ञासा मतलब भगवान के पास कौन आता है, जैसे भगवान भगवत गीता में कहते बहुनाम जन्मनामंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते। तो ये बहुनाम क्या है, बहुत सारे जन्म क्या है, ये अथातो ब्रह्म जिज्ञासा में समझाया। अथातो ब्रह्म जिज्ञासा मतलब अथ अत ब्रह्म जिज्ञासा। अब जब आपने ये कर लिया, अब ब्रह्म जिज्ञासा कीजिए। क्या कर लिया आपने, इसको बलदेव विद्याभूषण समझाते अथ अत का अर्थ तो क्या है, वो कहते अब जब आपने कई कई जन्मों में तपस्या कर ली, आपने कई कई जन्मों में ब्रह्मचर्य का पालन कर लिया, आपने कई कई जन्मों में यज्ञ कर लिया, आपने कई कई जन्मों तक देवी देवताओं को प्रसन्न करने का प्रयास कर लिया, यज्ञ कर लिए, दान कर लिया, अन्य धर्म की क्रियाएं कर ली, ब्रह्मचर्य का पालन किया, तपस्या की, अब अर्थात ये सब करने के बाद अब अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, अब भगवान की ओर मुड़ो, अब भगवान की जिज्ञासा करो। तो भगवान की जिज्ञासा करने का अवसर ये हमें मिलता है भक्त की कृपा से। ब्रह्मांड भ्रमिते कोनो भाग्यवान जीव। तो ब्रह्मांड भ्रमिते, ये ब्रह्मांड भ्रमिते मतलब क्या है, अलग अलग योनियों में और मनुष्य शरीरों में भी, मनुष्य के भी कई शरीर, ब्रह्मांड भ्रमिते। और कौन भाग्यवान होता है, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। तो इसीलिए ये नलकुवर और मणिग्री का पहला कारण कृष्ण प्राप्ति का है भक्त की कृपा। और हमारे जीवन में भी वही है, कोई भक्त ये नहीं कह सकता कि कि मैं भक्ति में आया हूं बिना भक्त की कृपा के, कोई नहीं कह सकता। अगर कोई कहता मैं तो ग्रंथ पढ़कर आ गया, कोई भक्त नहीं मिले, तो ग्रंथ लिखने वाले भक्त हैं, उनकी कृपा हुई। ग्रंथ देने वाले आपको भक्त हैं, उनकी कृपा हुई। तो बिना भक्त की कृपा के तो हो ही नहीं सकता। कोई कह सकता नहीं, मैंने ना ग्रंथ पढ़ा ना कुछ, बस मेरे मन में इच्छा हो गई और मैं मंदिर में आ गया, मैं कृष्ण भक्ति में आ गया। लेकिन कृष्ण भक्ति में आ गए, ये प्रेरणा मन में कहां से आई? कहीं ना कहीं कोई भक्त से संपर्क होगा, आपने देख लिया होगा कभी किसी भक्त को, आपने सुन लिया होगा कभी किसी भक्त के विषय में, किसी भक्त को बोलते हुए सुन लिया होगा, तो इससे आपका प्रारंभ हो। तो कहीं ना कहीं भक्त से जुड़ते हैं। तो पहला कारण कृष्ण प्राप्ति का, नलकुवर और मणिग्रीव का था, भक्त की कृपा, नारद मुनि ने बहुत कृपा की। दूसरा कारण, कृपा तो हो गई भक्त की, भगवान भक्त ने कृपा कर दी, लेकिन उन्होंने लिया कैसे उसको कृपा को, ये बहुत महत्वपूर्ण है। एक समय श्रील प्रभुपाद अपने कुछ शिष्यों के साथ बैठे हैं और शिष्यों ने कहा, प्रभुपाद तमाल कृष्ण पर आपकी बहुत ज्यादा कृपा है। थोड़ा भक्तों को लग रहा था कि तमाल कृष्ण महाराज ये बहुत ज्यादा निकट हैं आगे। प्रभुपाद ने कहा, मेरी कृपा तुम सब पर समान है, केवल तमाल कृष्ण ने उसको अच्छी तरह से लिया है। तो ये दूसरा कारण नल कुंवर और मणिग्रीव का है कृष्ण प्राप्ति में, कि उन्होंने उस कृपा को सही तरीके से स्वीकारा, उन्होंने कोई विरोध नहीं किया, उन्होंने नारद मुनि के प्रति अपशब्द नहीं कहे, उन्होंने ये नहीं कहा इतने साल वृक्ष बने खड़े रहेंगे क्या होगा पता नहीं, नहीं, उन्होंने उस कृपा को, हालांकि वो दंड था, लेकिन उसको कृपा मानकर उन्होंने स्वीकार किया। तो ये दूसरा कारण भक्ति में आगे बढ़ने का होता है। पहला, हम गुरु की कृपा, वैष्णवों की कृपा को बड़ी प्राप्त करें, कृपा हो हमारे ऊपर, यही भाग्य है। अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, मतलब कितने जन्मों के बाद ये होता है कि कोई भक्त की कृपा होती है। हर जन्म में हम या तो भोग करते रहते हैं, कर्म कांड करते रहते हैं, कुछ प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, और फिर एक तड़प आती है हृदय में, हम तरसते हैं भक्तों का संग पाने के लिए, भक्ति पाने के लिए, लेकिन हम जानते नहीं हम तरस किस लिए रहे, बस एक तड़प होती है मन में। जब हमने भोग कर लिया, कर्म कांड कर लिया, ज्ञान का मार्ग कर लिया, एक तड़प बढ़ जाती है, हम तरसने लगते हैं किसी, जानते नहीं है किस लिए तरस रहे, किस चीज को प्राप्त करना चाहते। और फिर जब भक्तों का संग मिलता है तब हमें ज्ञान होता है कि हम इस भक्ति के लिए तरस रहे थे कई कई जीवन। तो ये दूसरा कारण था नलकुवर और मणिग्रीव का, कि उन्होंने कृपा को बहुत अच्छी तरह से ग्रहण किया, और हमें भी ये लेना चाहिए। भक्त की कृपा तो हो, लेकिन हम उसको ग्रहण कैसे करें? सही भाव में ग्रहण करना चाहिए, और ग्रहण करने का अर्थ क्या है? उसका पालन करना। कृपा मिली, उसको सही भाव में ग्रहण करें और सही तरीके से जीवन में उतारें। अर्थात गुरु की कृपा क्या है, भक्तों की कृपा क्या है? वैष्णवों की कृपा ये नहीं होती कि आपका बिजनेस बहुत अच्छा हो जाए, वैष्णवों की कृपा ये नहीं होती कि आपके घर में सब कुछ ठीक रहे, ये तो वैसे भी हो जाता है। वैष्णवों की सच्ची कृपा क्या है? वैष्णव सच्चे धर्म को स्थापित करते हैं या सच्चे धर्म को प्रचार करते हैं, जिसको भगवान स्थापित करते हैं। भगवद गीता में भगवान कहते हैं, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, कि जब जब धर्म की ग्लानी होती है तब तब मैं आता हूं। तो धर्म की ग्लानी क्या है, कौन से धर्म की ग्लानी की बात कर रहे हैं भगवान? धर्म की ग्लानी का अर्थ होता है जो व्यक्ति अपनी आध्यात्मिक पहचान को भूल जाता है, उसे धर्म की ग्लानी कहते हैं। जब व्यक्ति अपना संबंध कृष्ण से भूल जाता है, उसे धर्म की ग्लानी कहते हैं। जब व्यक्ति कृष्ण से प्रेम करना भूल जाता है, उसे धर्म की ग्लानी कहते हैं। तो ऐसे कार्य, गुरु का कार्य क्या है? गुरु कौन है? गुरु वो हैं जो इस धर्म की ग्लानी से हमें दूर ले जाए, अर्थात गुरु वो हैं जो हमें हमारी आध्यात्मिक पहचान की ओर ले जाए, गुरु वो हैं जो हमें कृष्ण की ओर ले जाए, गुरु वो हैं जो हमें अन्य सभी मार्गों पर जिन पर हम कई कई जन्म तक भटक चुके हैं उससे खींचकर हमें सही मार्ग पर लगाए। ये भक्त हैं, ये वैष्णव हैं, ये गुरु की कृपा है और ये वैष्णवों की कृपा है। तो ऐसी कृपा को हमें लेना कैसे चाहिए? जब वैष्णव कृपा करें, जब हमें हमारी आध्यात्मिक पहचान वो बताएं, जब हमें सही मार्ग बताएं, जब सही उद्देश्य बताएं जीवन का, तो कैसे हमें लेना चाहिए? हमें बड़ी नम्रता से उसको ग्रहण करना चाहिए, जैसे नलकूबर और मणिगिरी ने किया। हालांकि उनको दिखने में एक दंड था कि अच्छे भले देवता हैं और वो वृक्ष बन जाएंगे, लेकिन उन्होंने बहुत सही भाव में उसको ग्रहण किया, नम्रता के भाव में, कृतज्ञता के भाव में। ये नम्रता और कृतज्ञता ये हमारे हृदय में होनी चाहिए जब हम वैष्णवों के साथ संग करें, वैष्णवों की कृपा को प्राप्त करें। वैष्णवों के संग में आकर हमें ये सोचना चाहिए कि मेरी कोई योग्यता नहीं है, ये मैं किनके साथ रह रहा हूं, ये हैं कौन, मेरी कोई योग्यता नहीं है इनके समक्ष खड़े रहने की, लेकिन कृपा है इनकी कि ये अपना संग दे रहे हैं, कृपा है इनकी कि अपनी कृपा मुझ पर बरसा रहे हैं, कृपा है इनकी कि ये मेरा मार्गदर्शन कर रहे हैं। इसे कृतज्ञता कहते हैं। तो हमारे अंदर वो कृतज्ञता होनी चाहिए जब हम भक्तों के संग में हों। क्या योग्यता है हमारी श्रील प्रभुपाद के ग्रंथों को पढ़ने की? क्या योग्यता है हमारी हरिनाम को लेने की? क्या योग्यता है हमारी ऐसे महान भक्तों का संग करने की जिन्होंने जीवन समर्पित किया है कृष्ण? ये कोई छोटी बात नहीं है जीवन समर्पित करना। ऐसी कृतज्ञता का भाव हमारे अंदर होना चाहिए जो हमें नम्र बनाए, अहंकार ना हो। ये ना सोचें कि ये तो मेरा अधिकार है, मैंने बहुत कुछ किया होगा पूर्व जन्म में या इस जन्म में भी मैंने बहुत सेवा की। बिल्कुल अधिकार नहीं है। अधिकार तब होता है जब कोई चीज कर्म से मिलती है। आपने कर्म कर दिया, अधिकार हो गया आपका। जैसे सुंदर शरीर, आपने कोई अच्छा पुण्य कार्य कर दिया, सुंदर शरीर आपका अधिकार हो गया। धन कमाना, आपने कुछ पुण्य का कार्य किया, धन आपका अधिकार हो गया। लेकिन एक बात जान लीजिए, भक्ति अधिकार नहीं, भक्ति आपको किसी कर्म के अधिकार से नहीं मिलती है कि हमने बहुत से कर्म किए अधिकार हो गया। नहीं, भक्ति केवल कृपा से मिलती। कोई अधिकार नहीं है हमें भक्ति करने का, कोई अधिकार नहीं है हमें भगवान के नाम का जप करने का, कोई अधिकार नहीं है भागवत सुनने का। भागवत कौन सुन सकते हैं? नैमिषारण्य में 88,000 ऋषि मुनि बैठे हैं जिन्होंने हजारों वर्ष तक यज्ञ कर लिया, सारा कुछ वैराग्य उत्पन्न कर लिया, त्याग दिया सब कुछ, वो भागवत सुन रहे। भागवत कौन सुन सकते हैं? सुखदेव गोस्वामी सुन सकते हैं व्यास देव से, जिन्होंने जिनके हृदय में पूर्ण वैराग्य है, जन्म लेते ही जो घर छोड़कर भाग गए वो भागवत सुन सकते हैं। भागवत परीक्षित महाराज सुन सकते हैं जिन्होंने अपने राज्य को मलवत त्याग दिया। अब क्या योग्यता हमारी है भागवत सुनने की? सुखदेव गोस्वामी जैसे लोग जिन भागवत श्रवण करते हैं, परीक्षित महाराज भागवत श्रवण करते हैं, 88,000 ऋषि मुनि भागवत श्रवण करते हैं, क्या हमने कर लिया है जो हमारी योग्यता है? कौन से हम ऋषि हैं? कौन सा बड़ा त्याग हमने कर दिया? कौन सा वैराग्य उत्पन्न हो गया? हमारी अंदर एक ही योग्यता है और वो है भगवान की कृपा। बस भक्तों की कृपा हुई है, भगवान की कृपा भक्तों के माध्यम से आती है। हम लोग रोज गाते हैं, संसार दावा नल लीढ़ लोक त्रणाय कारुण्य घना घनात्वं प्राप्तस्य कल्याण गुणार्णवस्य। ये जो कृपा भक्तों की आ रही है कहाँ से आती है? भगवान से। भगवान की कृपा भक्त माध्यम है और उनसे हम तक पहुंचती है। तो इसलिए हमें ये बात समझनी चाहिए। तो उसको सही दृष्टि में, तो सही भाव लेने का क्या है जो नलकुवर मणिग्रीव ने किया? कृतज्ञता का भाव, नम्रता का भाव। जब भी हम भक्तों का संग करें हमें कृतज्ञ होना चाहिए। कैसे कृतज्ञ होंगे? जब ये समझेंगे कि हमारी एक क्षण भी इनके सामने खड़ी होने की योग्यता नहीं, लेकिन हम हैं, ये कृपा है। कृपा उसको कहते हैं कि जिसके लिए आप योग्य नहीं हैं वो आपको मिल जाए, जिसके लिए आप योग्य हैं वो मिले, वो तो न्याय है, वो कृपा नहीं है। लेकिन जिसके लिए आप योग्य नहीं हैं वो आपको मिले, उसे कृपा कहते हैं। तो भक्तों के संग के आप योग्य नहीं हैं, लेकिन हमें भक्तों का संग मिलता है, ये कृपा है। भागवत पढ़ने के हम अधिकारी नहीं हैं, लेकिन हम भागवत पढ़ रहे हैं, ये भक्तों की कृपा है। तो ऐसे उन्होंने, ये दूसरा कारण था कृष्ण प्राप्ति का, कि पहला भक्तों की कृपा हुई, दूसरा उन्होंने उस कृपा को बड़ी अच्छी तरह से सही भाव में स्वीकार किया, और तीसरा बड़ा महत्वपूर्ण कारण, उन्होंने धैर्य बनाए रखा, विश्वास रखा। नारद मुनि के शब्दों में, नारद मुनि ने कहा था कि आगे कृष्ण के दर्शन होंगे, वो विश्वास रखा और धैर्य बनाए रखा। ये नहीं कहा कि बस नारद मुनि 100 साल बहुत ज्यादा है, अभी क्यों नहीं, तो धैर्य बनाए रखा। तो हम भी जब भक्तों का संग करें, हमारे ऊपर भी भक्तों की कृपा हो, हम उस कृपा को सही भाव में लें और फिर धैर्य बनाए रखें कि होगा एक दिन। हम कभी कभी विचलित हो जाते हैं, 10 साल हो गए, 15 साल हो गए, 20 साल हो गए जप करते हुए, प्रभु जी आंखों में आंसू नहीं आ रहे हैं, क्या करें? आंखों में आंसू आना उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना हृदय का पिघलना महत्वपूर्ण है। आंसू हृदय में आने चाहिए, हृदय को जो पत्थर बनाकर रखा है उसको पिघलाना चाहिए। भागवत में कहा है कि हमने अपने हृदय को लोहे का बना लिया, स्टील, उसको हमने लोहे के दरवाजे से ढक लिया है। तो पिघलना हृदय चाहिए, हृदय पिघलेगा आंखें अपने आप नम हो जाएंगी। तो इसीलिए इन इन चीजों को बड़ी गंभीरता से पालन होना चाहिए। विश्वास रखिए, धैर्य बनाए रखिए, एक दिन होगा, कृष्ण की कृपा आएगी। कोई कह सकता अगर नहीं आई तो क्या होगा? कृष्ण की कृपा, इसका अर्थ है कि आपने कृष्ण को समझा ही नहीं, इसका अर्थ है कि आपने कृष्ण भक्ति की ही नहीं। क्योंकि जिसने कृष्ण भक्ति कर ली उसके मन में ये संशय आ ही नहीं सकता कि कृष्ण की कृपा नहीं आई, उसे तो विश्वास हो जाता है। एक बार जो बड़े प्रेम से कृष्ण का नाम ले ले, उसे विश्वास हो जाता है कि कृष्ण की कृपा आएगी। फिर जो भक्ति करे, सेवा करे, उसको क्यों नहीं विश्वास होगा? और अगर आपके हृदय में विश्वास नहीं है कि कृष्ण की कृपा आएगी, अर्थ है आप भक्ति ही नहीं। तो ये तीसरा कारण था उनका। क्षमा कीजिए, समय तो बहुत ज्यादा हो रहा है, हम तो अभी केवल कारण पर ही हैं। तो खैर, अब आगे ज्यादा कारणों पे नहीं जाएंगे, और बहुत से कारण हैं, उनकी जीवन से हम सीख सकते हैं। तो ऐसे वे खड़े रहे, और फिर कृष्ण के दर्शन, दामोदर लीला के बाद कृष्ण ने उनको दर्शन दिए। दर्शन तो वैसे ही हो रहे थे, कृष्ण खेल रहे हैं उस आंगन में, ऐसा नहीं था नलकुवर मणिगिरी को केवल एक बार दर्शन हुए, वो तो रोज दर्शन कर रहे हैं कृष्ण का, कृष्ण वहीं खेल रहे हैं, यशोदा ने बांधा, वो दर्शन कर रहे हैं, उससे पहले कृष्ण ने लीलाएं की, वो दर्शन कर रहे हैं। और फिर दामोदर लीला के समय वे दोनों सामने प्रकट हुए, और तब तक उनका हृदय शुद्ध हो चुका, नारद की कृपा हुई, कृपा को स्वीकार किया, धैर्य बनाए रखा, कृष्ण की लीलाओं के दर्शन किए, अब शुद्ध हृदय से प्रार्थनाएं अर्पण की, बहुत सुंदर सुंदर प्रार्थनाएं अर्पण की। और अंतिम प्रार्थना उन्होंने, जो आज का हमने श्लोक पढ़ा, वो प्रार्थना की, वाणी गुणानुकथने श्रवणों कथायाम। क्या प्रार्थना कर रहे हैं? उन्होंने ये नहीं मांगा भगवान सामने हैं, उन्होंने ये नहीं मांगा कि भगवान वापस हम जाकर भोग करना शुरू कर दें, हम छोड़ आए थे वहां स्त्रियों को, वो इंतजार कर रही होंगी हमारा, हमें जल्दी वापस भेजिए। उन्होंने ये नहीं मांगा कि भगवान हम फिर से धनाढ्य हो जाएं, धन आ जाए, सुंदरता आ जाए, नहीं। वाणी गुणानुकथने, उन्होंने कहा कि हमारी वाणी ये हमेशा आपका गुणगान करती है, हमारी वाणी से कभी कोई गलत बात ना निकले, वाणी को तपस्या में लगाना चाहिए, हमारा जीवन का उद्देश्य ही तपस्या है। वाणी को तपस्या में लगाइए, आंखों को तपस्या में लगाइए, कानों को तपस्या में लगाइए। तो वाणी की तपस्या क्या है, भगवान भगवद्गीता में कहते हैं, अनुद्वेग करम वाक्यम सत्यम प्रियम हितम च यत् स्वाध्याय व्यसनम चैव वाङ्मयम् तप उच्यते। तो वाणी की तपस्या क्या है, वाणी की तपस्या है अनुद्वेग करम वाक्यम, ऐसे वाक्य बोलिए जिससे कोई व्यक्ति उत्तेजित ना हो। अनुद्वेग करम वाक्यम, सत्यम सत्य बोलिए, प्रिय हितम चयत, व्यक्ति के हित में होना चाहिए, और सबसे महत्वपूर्ण स्वाध्याय, सदैव वैदिक शास्त्रों का उच्चारण करते रहिए, ये वाणी की तपस्या है। तो इसलिए हमें भगवान की भक्ति में जब हम लग जाते हैं तो हमारी वाणी से क्या निकलता है, सदैव वैदिक शास्त्रों का श्लोक या शास्त्रों का उच्चारण। और अगर हमें कोई श्लोक याद नहीं है तो महामंत्र बहुत है। रूप गोस्वामी भक्ति रसामृत सिंधु में कहते हैं कि जब हम भगवान के समक्ष जाएं तो हमें प्रार्थनाएं अर्पण करनी चाहिए, और अगर कोई प्रार्थना नहीं आती है तो हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये प्रार्थना हम अर्पण कर सकते हैं, सबसे अच्छी प्रार्थना, क्यों, हम भगवान से सेवा मांग रहे हैं। तो वाणी गुणानुकथने, श्रवणों कथायाम, और सुने क्या, आपकी कथा सुने। सुनने में भी हमें ऐसा नहीं सुनना चाहिए जो व्यर्थ की बातें, जैसे कौवा होता है, कौवा हमेशा गंदे स्थान पर जाता है, कभी अच्छे स्थान पर नहीं जाता। तो हमें ऐसा नहीं सुनना चाहिए कि जहां पर केवल गंदगी है, भोग की बात है, आनंद की बात है, इस जगत में अपने प्रभुत्व को स्थापित करने की बात है, ये सारी गंदगियां हैं, इसलिए हमें उस स्थान पर नहीं जाना चाहिए। कौवा मत बनिए, भगवान के बारे में श्रवण करना है तो कौवा नहीं बनना चाहिए। और लोग क्या करते हैं, श्रोतव्यादीनि राजेंद्र नृणाम संति सहस्त्रशः, सुनने के लिए क्या सुनना है, सुबह सुबह व्हाट्सएप पे सुनना है, सुबह सुबह टीवी पर सुनना है, सुबह सुबह इंटरनेट पर सुनना है, क्या सुनना है, केवल कूड़ा करकट। इसीलिए कौवे हैं वे लोग जो भगवान की कथा नहीं सुनते और कूड़े करकट को महत्व देते हैं। तो कौवा नहीं बनना चाहिए और ना ही बैल बनना चाहिए। एक बैल क्या होता है, एक छोटा सा बच्चा बैल को नाक रस्सी पकड़कर कहीं भी ले जाता है और बैल उसके पीछे पीछे चलता। आपने देखा, आप में से अगर कोई गांव में रहे हैं, हमें नहीं पता अहमदनगर में क्या स्थिति है, लेकिन अगर आप में से कोई गांव में रहे हैं तो आप जानते, छोटा सा बच्चा होगा वो इतने बड़े बैल को ले जाता। तो इसी तरह हमें श्रवण करना है तो ऐसे नहीं कि जहां भी कोई ले जाए वहां चले जाएं। किसी ने कहा आज फला फला स्वामी जी आ रहे हैं, वहां पर श्रवण करना, चल दी। किसी ने कहा आज वहां उस मंदिर में, चल दी। किसी ने कहा आज वो शिव जी की कथा, वहां चल दी। किसी ने कहा गणेश जी की कथा, वहां चल दी। किसी ने कहा ये बैल नहीं बनी है, ये बैल का काम है जहां चले जाना। हमें श्रवण करना चाहिए कृष्ण कथा का केवल। और आप सोच रहे होंगे इतने सारे प्राणियों का क्यों नाम ले रहे हैं। एक तो बैल नहीं बनना है, कौवा नहीं बनना है, साथ साथ आपको ऊंट भी नहीं बनना है। ऊंट क्या करता है, ऊंट होता है वो कांटे खाता है, और कांटे उसके गले में अंदर जब जाते हैं तो छीनते हैं गले को, और सारा खून निकलता है और उस खून से, वो खून से मिले कांटों को खाता है तो उसको आनंद आता है, स्वाद आता है और वो और खाता है कांटे। उसको ये नहीं पता कि ये कांटे उसके ही शरीर को छील कर उसी का खून उसको पिला रहा है और उसको उसी में स्वाद आ रहा है। तो ऐसे ऊंट मत बनिए कि हम ऐसी चीजों को सुने जो हमारे जीवन से खून निकाल दे, अर्थात जो हमारा ही नुकसान कर दे। खून चले जाने का अर्थ क्या है? व्यक्ति कमजोर हो जाता है। तो हमें भक्ति में कमजोर करने वाली चीजों को नहीं सुनना चाहिए। वो चीजें जो कृष्ण भक्ति के विरुद्ध हैं, वो चीजें जो कृष्ण के अलावा कोई और कथा है, वो केवल इस तरह है कि हम सुनते हैं, आनंद आता है हमें, मनोरंजन। बड़ी बड़ी कथाएं होती हैं, भागवत कथाएं होती हैं, संगीतमय भागवत कथा, किस लिए? मनोरंजन। और वो मनोरंजन कैसा है? ऊंट के मनोरंजन के समान है। खाते जाइए, आपका ही खून निकल रहा है और आप ही को आनंद देगा। तो ऐसे हमें ऊंट भी नहीं बनना चाहिए। तो क्या बनना चाहिए, हमें कैसे श्रवण करना चाहिए? वैसे तो बहुत से चीजें श्रवण हो सकती हैं। हमें श्रवण एक मछली की तरह कर लेना चाहिए। मछली जब पानी में चलती है, आपने देखा है, उसकी दृष्टि सामने रहती है, मछली का ध्यान एकदम सामने रहता है, पानी में चाहे कुछ भी हो जाए वो चलती रहती है। तो मछली बनिए, मछली बनिए, श्रवण करते हुए पूर्ण ध्यान से श्रवण कीजिए। आजकल ये जूम पर क्लासेस हो गई हैं, इसीलिए लोग सारे काम करते हुए श्रवण करते हैं, कुकिंग भी कर रहे हैं, घर में और कुछ भी कर रहे हैं, और वो चल दिया, वो चल रहा है अपना, मतलब प्रभु जी बोलते रहें और हम अपना कार्य करते रहें। नहीं, श्रवण होना चाहिए मछली की तरह, मछली बनी, पूरा ध्यान, इधर उधर नहीं। कम से कम कृष्ण को इतना समय तो देना चाहिए हमें। ये अच्छा नहीं है कि हम कुकिंग करते हुए, बाकी सारे कार्य करते हुए भागवत भी सुन रहे हैं। अरे, एक घंटा आप कृष्ण को नहीं दे सकते? कृष्ण ने आपको जीवन दिए हैं, कई जीवन दिए हैं, आज भी दे रहे हैं, हमेशा आपके साथ हैं, फिर भी आप एक घंटा नहीं दे सकते हो। तो इसलिए श्रवण मछली की तरह हमारा होना चाहिए, और साथ साथ हमें तोते से भी सीख लेना चाहिए। तोता क्या करता है? जो सुनता है वही बोलता है। तो हमें एक अच्छे भक्त बनने के लिए जो हम सुनने उसी को दोहराएं, अपने मन की कोई बात नहीं, बस सुनना है और दोहराना है। भगवद गीता यथारूप, जशी आहे तशी। हम सोच रहे थे प्रवचन मराठी में करें, लेकिन हमें बताया हम मराठी को समझते नहीं है, हमें महाराष्ट्र में मराठी नहीं समझते, बड़ा आश्चर्य की बात है। तो क्या करें, मराठी में बोलें क्या?
हरि बोल,
हरि बोल,
हरि बोल। अच्छा, पण मला मराठी बोलायला येत नाही म्हणून हिंदी मध्ये प्रवचन करणार, ठीक आहे? सो तो हमें तोते की तरह रिपीट करना चाहिए, बस जो सुना, जो आचार्यों से सुना, जो प्रभुपाद के ग्रंथ में पढ़ा, जो भक्तों से सुना, बस उसको दोहरा दीजिए। प्रभुपाद कहते हैं ये सच्ची सफलता है एक प्रचारक के। तो आप तोता बन जाइए, सुनिए और हंस बनिए। हंस का कार्य होता है, वो दूध को पानी से अलग कर देता है। कैसे करता है? भगवान ने उसकी जिह्वा पर एक केमिकल दिया हुआ है, जैसे ही दूध को स्पर्श करता है दूध फट जाता है, पानी अलग हो जाता है, पनीर रह जाता है, वो पनीर खा लेता है। ये हंस का कार्य। मतलब अगर हम गलती से इधर उधर कुछ सुन भी लें तो हमें क्या करना चाहिए? हमें उसमें से सार को लेना चाहिए। भक्त को सारग्राही बनना है। भगवान भाव ग्राही जनार्दन है, हम लोग भावग्राही नहीं हो सकते, हमें सार ग्राही लेना, सार को हंस बनिए। इसीलिए भक्तों की तुलना हंस से की जाती है, परमहंस। और अंततः हमें श्रवण करना है तो हमें चातक पक्षी बनना चाहिए। चातक पक्षी प्यासा मर जाएगा, लेकिन जब तक वर्षा नहीं होगी, वो भी वर्षा ऋतु में, केवल स्वाति नक्षत्र में, सीधे जब बादलों से जल आता है उनको, उसको ग्रहण करता है। ऐसे हमें बनना है। क्या करना है? हमें ये देखना है कि केवल कृष्ण कथा, मर जाऊंगा लेकिन कुछ और नहीं सुनूंगा, ये हमें सुन, ये हमारा भाव होना चाहिए चातक पक्षी की तरह। और वो भी स्वाति नक्षत्र में, मतलब वो भी प्रमाणिक जगह से, तो कृष्ण कथा सुनूंगा प्रमाणिक व्यक्ति से, नहीं तो मर जाऊंगा कुछ और नहीं सुनूंगा, ये होना चाहिए। तो वाणी गुणानुकथने श्रवणो कथायाम हस्तो च कर्मसु, हमारे हाथ हमारी इंद्रियां क्या करें, भगवान आपकी सेवा में लगे, आपके मंदिर को साफ करें, आपके लिए हार बनाएं, आपके लिए भोग बनाएं, आपके मंदिर चलकर आए। हस्तो च कर्मसु, मन मन का क्या करें, इधर उधर भागता रहता है, कहां कहां हमने लगा दिया है, आपके चरण कमलों में लगे, जैसे राजा कुलशेखर प्रार्थना करते हैं, कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजरंतम अद्वैव मे विशतु मानस राजहंस प्राण प्रयाण समये कफवात पित्तये कंठावरोध निवधो स्मरणम कुतस्ते। वो कहते मैं इंतजार नहीं करना चाहता मृत्यु तक आपका स्मरण करने के लिए, पता नहीं स्मरण होगा कि नहीं, कंठावरोध, कंठ अवरोध हो जाएगा, कहां से स्मरण होगा, इसलिए हे कृष्ण अभी इसी समय मेरे मन को आपके चरण कमलों में लग। वाणी गुणानुकथने श्रवणो कथायाम हस्तौ च कर्मसु मनः पत्तबपाद योने, और सिर, सिर का क्या करें, वो कहते हैं शिरस्तव निवास जगत प्रणामे, हर उस वस्तु के सामने झुके जो आपसे संबंधित है, हर उस व्यक्ति के सामने हमारा सर झुके जो आपसे संबंधित है, या फिर वो कह रहे हैं कि हम हर वस्तु को प्रणाम कर सकें जिसमें हम आपको देख सकें। तो दृश्य, और फिर अंत में कहते बहुत सुंदर बात, दृष्टि सताम दर्शनेस्तु भगवत अनुनाम, कि हमारी दृष्टि कहाँ हो प्रभु, किसको देखें, क्योंकि दृष्टि बहुत महत्वपूर्ण है। अब दृष्टि इसी से काम वासना प्रवेश करती है, जब आप देखते हो तो वासनाएं प्रवेश कर जाती है, जब आप देखते हो तो कुछ करने की भावना प्रवेश कर जाती है। दृष्टि कहाँ हो, दृष्टि सताम दर्शने, दृष्टि केवल आपके दर्शन में या आपके भक्तों के दर्शन में हो। दृष्टि सताम दर्शने तु भगवत नाम, तो इस तरह से हमारा जीवन व्यतीत हो। तो ये प्रार्थना हम सबको करनी चाहिए भगवान से, हे भगवान बस हमारी वाणी से आपका गुणगान निकलता रहे, हम आपकी कथा सुनते रहें, मन आपके चरणों में लगा रहे, हाथों से हम आपके हाथ पैरों से इत्यादि आपकी सेवा कर सकें, सबको प्रणाम कर सकें और आपके भक्तों का दर्शन कर सकें, जीवन की यही सफलता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। किसी का कोई प्रश्न है, कुछ पूछना चाहते हैं, कोई जिज्ञासा मन में, या तो आप पैसे डायरेक्ट पूछ सकते हैं या चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। केवल एक या दो प्रश्न, क्योंकि हमें थोड़ा जल्दी जाना है, हमारी और एक क्लास है अभी कुछ ही देर में। यस, किसी का कोई प्रश्न, कोई शक?
Yes.
हाँ बोलिए प्रभु, सुनाई दे रहा है।
हाँ प्रभु जी, आपने प्रार्थना के बारे में बोला, आपने जो बोला वो प्रार्थना करनी चाहिए, लेकिन हम भौतिक जगत में रहते थे, हमारे भौतिक भी बहुत कुछ प्रार्थना करते हैं, तो कैसा करना चाहिए प्रभु जी? सिर्फ आध्यात्मिक प्रार्थना करना चाहिए कि कोई भौतिक भी प्रार्थना, भौतिक प्रॉब्लम रहते है, कभी कभी कोई बीमार रहता है, कोई हॉस्पिटल में रहता है, तो हम प्रार्थना करते है, तो करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए?
बहुत अच्छा प्रश्न है प्रभु। निश्चित हमें भौतिक प्रार्थनाएं करनी चाहिए, केवल कोई हॉस्पिटल में हो तो उतना ही नहीं, हमें जितनी भी मन में जो भी प्रार्थना करनी चाहिए, हमें भगवान के सामने जाकर कहना चाहिए, भगवान मेरी इच्छा है कि मुझे बहुत धन मिल जाए, कुछ तो करो। भगवान मेरी इच्छा है कि सुंदर स्त्री मिल जाए, कुछ तो करो। ऐसी जितनी भी प्रार्थनाएं मन में है, भौतिक प्रार्थनाएं, या कोई बीमार है या कुछ और जो भी, हमें निश्चित करनी चाहिए। लेकिन उन प्रार्थनाओं के अंत में एक प्रार्थना जरूर करनी चाहिए, और वो प्रार्थना ये होनी चाहिए कि भगवान मैंने जो भी कहा है मेरी बात सुनना नहीं। अगर ऐसे आप कर रहे हो तब भौतिक प्रार्थना करने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर आप कहोगे अरे प्रभु जी कोई बीमार है उसके लिए हम प्रार्थना करें या ना करें? निश्चित प्रार्थना करें, लेकिन ये प्रार्थना करें कि भगवान मेरी सुनना नहीं, आपको जो सही लगे वो करना। ये महत्वपूर्ण है प्रार्थनाओं में। हम प्रार्थना कर रहे हैं, कोई आदेश नहीं दे रहे हैं भगवान को, भगवान इसको ठीक कर दीजिए। अरे क्यों ठीक कर दे भगवान, वो जाने, अगर वो ठीक करना चाहते तो करेंगे, तो उन पर छोड़ना चाहिए। प्रार्थना का अर्थ होता है कि हम भिक्षुक के रूप में उनके सामने खड़े हैं, हमारी कोई शक्ति नहीं है, हमारे अंदर कोई बल नहीं है, हम उनको आदेश नहीं दे रहे हैं, इसीलिए हम उनसे प्रार्थना कर रहे हैं, आपको सही लगे वो कीजिए। तो प्रभु हमें भौतिक प्रार्थनाएं करनी चाहिए, लेकिन भाव ये होना चाहिए या बोलना ये चाहिए कि मैं चाहता हूं कि ये हो जाए, लेकिन आप जैसा चाहें वैसा कीजिए। जैसे अर्जुन ने किया, अर्जुन ने क्या कहा, जब अर्जुन ने समर्पण किया कृष्ण को, कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वं धर्म सम्मूढ़ चेता यत् श्रेयस्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते हम साधि माम। ये सबसे सही प्रार्थना है। क्या प्रार्थना की अर्जुन ने, कि मैं तो भ्रमित हो गया हूं, ये सब क्या हो रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा है, तो प्रभु शिष्यस्ते हम, मैं आपका शिष्य हूं, तो आप क्या कीजिए मुझसे, यत् श्रेयस्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे, मेरे लिए जो अच्छा हो वो कीजिए। अर्जुन ने ये नहीं कहा ये कीजिए वो कीजिए। तो ये हमारी प्रार्थना होनी चाहिए कि हाँ मेरी इच्छा है ये हो जाए, लेकिन जो आपकी इच्छा हो वो कर। जैसे अर्जुन को भगवान ने भगवद गीता के अंत में कहा यथेच्छसि तथा कुरु, तुम्हारी जो इच्छा हो करो, लेकिन अर्जुन ने कहा नहीं। अर्जुन ने क्या कहा, अर्जुन ने कहा मैं तो आपको समर्पण कर चुका हूं, नष्ट मोह स्मृति लब्धा तत् प्रसादात मया च्युत स्थितोस्मि गत संदेह करिष्ये वचनं तव, आप जो कहेंगे वो मैं करूंगा। हालांकि भगवान ने अर्जुन को कहा जो तुम्हें चाहिए वो करो, अर्जुन ने कहा नहीं आप जो कहेंगे वो करो। ये प्रार्थना हमारी होनी चाहिए। ठीक है, सत्य गोविंद प्रभु, हरे कृष्णा। ओके, और किसी का कोई प्रश्न है?
अतुल कृष्ण बाबू दंडवत प्रणाम प्रभु जी, हरे कृष्णा। प्रभु जी बाहर किसी प्रचार सेवा के लिए गए हैं, तो ऑन हिज बिहाफ I will just like to speak for a minute. Prabhu ji, आपने बहुत सुंदर,
आप क्या बोलना चाहते हैं, प्रश्न है कोई?
बहुत सुंदर प्रवचन दिया प्रभु जी, और बहुत हमें इसमें सीखने के लिए मिला। जैसे आपने तीन कारण बताए कि जो कृपा है उन्हें भक्त की कृपा मिली, और कृपा हमें भी मिलती है, लेकिन हम कैसे लेते हैं वो महत्वपूर्ण है, कृपा कैसे ली जाती है और धैर्य बनाए रखना, तो बहुत ही सुंदर ये पॉइंट थे। और बाद में वाणी की तपस्या आपने बताया, शास्त्र का ही अध्ययन करना, और मछली की तरह, कौवे की तरह नहीं होना चाहिए लेकिन मछली की तरह, और ऐसा करते हुए आपने अनेक उदाहरण दिए, तोते की तरह, हंस की तरह, चातक पक्षी की तरह, और प्रेयर्स करते रहना चाहिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। हम अभिलाषा रखते हैं कि आप हमें आने वाले दिनों में भी ऐसा संग देते रहे, और केवल आपको देख करके हमें प्रेरणा मिल गई, कि कैसे हम हमने भक्ति में गंभीर होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। अतुल कृष्ण प्रभु की जय। हरे कृष्ण धन्यवाद।
हरे कृष्णा, तो बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारा दंडवत प्रणाम गिरिवरधारी प्रभु कह दीजिएगा।
यस प्रभु।
हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम।
यस राम लक्ष्मण प्रभु, दंडवत प्रणाम।
दंडवत प्रणाम।
आपको देखकर प्रसन्नता हो रही है।
अरे प्रभु जी, आपको देखकर आप बहुत अच्छा हो। प्रभु जी, मुझे इसका लिंक मिलेगा क्या?
ये तो आप अहमदनगर के डिवोटीज को पूछ लीजिए।
अच्छा,
आपने रिकॉर्डिंग किया है इसका अहमदनगर के डिवोटीज?
हाँ प्रभु जी, लाइव यूट्यूब पे, तो पॉसिबल ही मिलना।
तो यूट्यूब पे कहाँ पर है राम लक्ष्मण प्रभु को बता दीजिए।
ओके, थैंक यू।
थैंक यू प्रभु, बहुत बहुत
धन्यवाद।
सुदंडवत प्रणाम। मां वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय। श्रील प्रभुपाद प्रेमानंदे हरि।
ये सब बातें
हैं। हाँ अच्छा, कौन जाएगा? हाँ ठीक है, आप देख लेते हैं।
नमः विश्वरं सचिता लसत् कुण्डले गोकुले ब्रजमानम्।
नमः विश्वरं सचिता
परां दुष्टमास्यान्तरो वृत्तगोप्या
वृतन्तं
मुहुर्नेत्रयुग्मं भुजन्तं करां भुजयुग्मेन सापङ्कनेत्रम्।
Thank you.
चुपके चुपके